नाथ
आप अपनी
सुधामयी
सर्वसमर्थ
सतत पावनी
अहेतुकी कृपा से
दुखी प्राणियों के हृदय
में त्याग का बल
एवं
सुखी प्राणियों के हृदय में
सेवा का बल
प्रदान करे
जिससे वे
सुख दुख के बंधन से मुक्त हो आपके पवित्र प्रेम का आस्वादन कर कृतकृत्य हो
जाए।
मेरे मित्रों उपस्थित महानुभाव तथा भाई और बहन, अभी हमने और आपने जो प्रार्थना की है उसमें क्या रहस्य है, उसका वास्तविक क्या तत्व है, अब उस पर विचार करना है। ऐसा कोई व्यक्ति है ही नहीं जिसके जीवन में किसी न किसी प्रकार की मांग न हो, किसी आवश्यकता का होना ही वास्तव में प्रार्थना है। कुछ लोग ये सोचते हैं कि प्रार्थना तो केवल ईश्वरवादियों की वस्तु है, पर वास्तव में ऐसा नहीं है। प्रार्थना तो प्राणी मात्र की वस्तु है। क्यों? क्योंकि कोई ऐसा व्यक्ति है ही नहीं जिसके जीवन में कोई न कोई आवश्यकता न हो। अपनी आवश्यकता को जानना ही वास्तव में प्रार्थना है। कुछ लोग कामनाओं को भी आवश्यकता मान लेते हैं, परंतु जो विचारशील हैं वे इस बात को जानते हैं कि कामना और आवश्यकता में बड़ा भेद है। कामना की तो निवृत्ति होती है अथवा उसमें प्रवृत्ति होती है, किंतु आवश्यकता की पूर्ति होती है। अब आप विचार करें कि जो प्रार्थना अभी आपने की उसमें सबसे पहला वाक्य है मेरे नाथ। इस वाक्य को उच्चारण करते ही ऐसा हृदय में भास होता है कि हम अनाथ नहीं हैं, कोई हमारा अपना है, और जो हमारा अपना है वो कैसा है, वो समर्थ है, रक्षक है। अब आप सोचिए कि समर्थ तथा रक्षक के होते हुए हमारे और आपके जीवन में चिंता और भय का कोई स्थान ही नहीं रहता। यह सभी जानते हैं कि निश्चिंतता और निर्भयता आने पर ही हम प्राप्त परिस्थिति का वास्तविक सदुपयोग कर सकते हैं। भयभीत तथा चिंतित होने पर हम अपनी परिस्थिति का सदुपयोग नहीं कर सकते, और परिस्थिति का सदुपयोग किए बिना न तो उत्कृष्ट परिस्थिति प्राप्त होती है और न हम परिस्थिति की दासता से ही मुक्त होते हैं। इस दृष्टि से जो व्यक्ति जिस परिस्थिति में है उसे उसका सदुपयोग करना ही होगा, और उसके सदुपयोग करने के लिए निश्चिंतता और निर्भयता अनिवार्य है। निश्चिंत तथा निर्भय होने के लिए यह आवश्यक है कि हम उससे अपना नित्य संबंध स्वीकार करें कि जिससे हमारी उत्पत्ति हुई है, जिसमें हमारी स्थिति है और जिससे हमें अभिन्न होना है। ऐसी कोई उत्पत्ति हो ही नहीं सकती कि जिसके मूल में कोई अनुत्पन्न तत्व न हो। इस दृष्टि से हम सबको ये मानना ही पड़ेगा कि जिससे हमारी उत्पत्ति हुई है वो हमारी उत्पत्ति से पूर्व है, चाहे हम उसको जाने अथवा न जाने, माने अथवा न माने, परंतु वो है अवश्य जिससे हम सबकी उत्पत्ति हुई है। एक ये भी नियम है कि जिससे हमारी उत्पत्ति हुई है उसको हम प्राप्त कर सकते हैं, उसमें हम श्रद्धा रख सकते हैं, उससे हम संबंध जोड़ सकते हैं, परंतु उसको अपने मनभूति आदि का विषय नहीं बना सकते। क्योंकि कार्य कारण में विलीन हो सकता है, कार्य कारण को विषय नहीं कर सकता। यह बात सभी विचारशीलों को माननी ही पड़ेगी। इस दृष्टि से हम उसे जाने अथवा न जाने, परंतु उसका होना स्वतः सिद्ध है। अब आप विचार कीजिए कि जो है वो हमारा अपना है। यह नियम है कि जिससे आत्मीयता होती है उसमें प्रियता अपने आप हो जाती है। प्रियता स्वभाव से ही रस रूप है, यह बात सभी के अनुभव में है। आप सोचिए, जिसे आप अपना मानते हैं क्या वो आपको प्यारा नहीं लगता है? और जो आपको प्यारा लगता है क्या उसमें आपको रस नहीं आता है? आत्मीयता प्रेम की जननी है और प्रेम रस का भंडार है। इस दृष्टि से जब हमने उसको अपना मान लिया कि जिससे समस्त सृष्टि उत्पन्न हुई है, जिससे समस्त सृष्टि प्रकाशित है, जिससे समस्त सृष्टि सत्ता पाती है, तो आप सोचिए कि हमारे और आपके जीवन में चिंता और भय का कोई स्थान ही नहीं रह जाता। क्यों? जो सबका सब कुछ है वह हमारा अपना ही है। तो जो हमारा अपना है उससे हमारी कोई भी बात छिपी नहीं है। अब आप कहेंगे कि तो फिर प्रार्थना की आवश्यकता क्या है? कि भाई, प्रार्थना की आवश्यकता तो इसलिए है कि हम स्वयं अपनी आवश्यकता से आकर्षित हो जाते हैं। बहुत कम भाई बहन ऐसे हैं जो सचमुच ये जानते हैं कि हमारी वास्तविक आवश्यकता क्या है। बहुत से लोग तो मन में उत्पन्न हुई कामनाओं को ही अपनी आवश्यकता मानते हैं। आप विचार करें और गंभीरता से विचार करें कि कामनाओं का उद्गम स्थान देहाभिमान है और देहाभिमान अविवेक शुद्ध है, विवेक शुद्ध नहीं है। इससे ये सिद्ध हुआ कि अविवेक शुद्ध उत्पन्न हुई कामनाओं से, अविवेक के द्वारा उत्पन्न हुई कामनाओं से कामनाओं को तो हम अपनी आवश्यकता नहीं कह सकते, अपितु एक दशा विशेष कह सकते हैं। कामना हमारी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कामना का उद्गम स्थान यह है मैं नहीं। आप सोचिए, अभी हम आपसे पूछें कि शरीर से अलग मानकर आप क्या चाहते हैं, तो आप कोई भी कामना नहीं बता सकते। तात्पर्य क्या निकला कि भाई, कामना तब उत्पन्न होती है जब हम अपने को देह मान लेते हैं। अब आप विचार करें कि अपने को देह मान लेना क्या अपने विवेक का विरोध नहीं है? आपको मानना पड़ेगा, अवश्य है, क्योंकि जिसको यह करके संबोधन करते हैं उसको मैं नहीं कह सकते। जैसे आप कहेंगे कि मेरा मकान, तो कम से कम आप ये जानते हैं कि मैं मकान नहीं हूँ, तो मेरा शरीर, ये भी तो बात आप जानते हैं। तो आप ही बताइए कि आप अपने ज्ञान के अनुसार अपने को शरीर नहीं मान सकते। आपको मानना ही होगा कि शरीर हमसे भिन्न है। जो चीज जानने में आती है वो जानने वाले से अलग होती है, जो चीज देखने में आती है वो देखने वाले से अलग होती है। हाँ, इतना ही नहीं, जिन साधनों से हम देखते हैं, सुनते हैं, सोचते हैं, वे साधन भी हमसे अलग हैं। इससे ये सिद्ध होता है कि भाई, शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि, प्राण आदि जितनी वस्तुएं हैं उनको मैं नहीं कह सकते। और आप कहें सरस मैं तो नहीं कह सकते, परंतु मेरा तो कह सकते हैं। तो कहना होगा कि बोलचाल की भाषा में जैसे ड्राइवर किसी मोटर को अपनी मोटर कह देता है, उसी प्रकार हम लोग बोलचाल की भाषा में भले ही कह दें कि शरीर मेरा है, हाथ मेरा है, परंतु भाई सोचो तो सही, क्या शरीर का विश्व से विभाजन हो सकता है? आपको मानना पड़ेगा नहीं हो सकता। क्यों? शरीर विश्व से अलग हो ही नहीं सकता। तो शरीर तो आपका हो गया, और जिस संसार रूपी सागर की शरीर लहर है वो आपका नहीं हुआ। इसमें भी तो आपके विवेक का विरोध है। कहना होगा कि शरीर हमारा है नहीं, किंतु उसके उपयोग मात्र में हमारा अधिकार है। तो जिसने हमें शरीर के उपयोग का अधिकार दिया है उसने हमारी ईमानदारी पर विश्वास किया है और उसके उपयोग करने के लिए विवेक भी दिया है। तात्पर्य निकला कि मिली हुई कोई भी वस्तु हमारी नहीं है और न कोई भी वस्तु हम है, अपितु उस मिली हुई वस्तु के उपयोग करने मात्र में हमारा आपका अधिकार है। उसको ही कर्तव्य निष्ठ प्राणी कर्तव्य के नाम से कहते हैं, धर्मात्मा उसे धर्म के नाम से कहते हैं। मान्यता का भेद है, अर्थ का कोई भेद नहीं है। इससे ये सिद्ध हो जाता है कि जो वस्तु सामर्थ्य योग्यता हमें प्राप्त है उसका उपयोग हमें अपने विवेक के अधीन करना है, अथवा यह कहो कि उस मिले हुए विवेक के प्रकाश में ही हमें मिली हुई सामर्थ्य का सदुपयोग करना है। परंतु आप जानते हैं कि ऐसा कौन व्यक्ति है जो असमर्थता का दुख अनुभव नहीं करता, ऐसा कौन व्यक्ति है जिसके सामने मृत्यु का भय नहीं है, ऐसा कौन व्यक्ति है कि जिससे कभी विवेक का विरोध नहीं हुआ। मानना ही पड़ेगा कि हमारे आपके सामने ये तीन समस्याएं हैं, मृत्यु का भय, सामर्थ्य की मांग और पवित्र होने की आवश्यकता। इन तीन दुर्बलताओं को सामने रखकर जब हम सोचते हैं तो हम इस बात के लिए विवश हो जाते हैं कि जिससे हमारी उत्पत्ति हुई है, जो हमारा अपना है, जिससे हमारा नित्य संबंध है, उसके सामने अपनी इस आवश्यकता को प्रकट करें। इसलिए नहीं कि वे हमारी आवश्यकता को नहीं जानते हैं, इसलिए कि हम स्वयं अपनी आवश्यकता को भूलकर कामनाओं के जाल में आबद्ध हो रहे हैं। इस दृष्टिकोण से अगर हमारा विचार करेंगे तो हमको आपको मानना ही पड़ेगा कि आज जीवन का सबसे पहला प्रश्न है कि हम अपनी आवश्यकता को जाने, अर्थात हम क्या चाहते हैं, इस बात को ठीक ठीक समझ लें। आप सोचिए मांगने का अधिकार किसको होता है जो जिसकी आवश्यकता हो, वही तो मांगता है। वैसे भूख लगने पर भोजन मांगना कोई अंचित तो नहीं है, अथवा यह कहो कि भूख का लगना ही भोजन का मांगना है, प्यास का लगना ही पानी का मांगना है, और जिसके सामने मांगना है वो कोई अप्राप्त तो है नहीं, वो कोई अप्राप्त है नहीं, वो तो प्राप्त है। क्यों? जिससे हमारी उत्पत्ति हुई है, यदि वो न हो तो उत्पत्ति ही सिद्ध न होगी और हमारी स्थिति ही सिद्ध न होगी। आप सोचिए और गंभीरता से सोचिए कि कार्य में सत्ता रूप से कारण सदैव रहता है, चाहे कार्य और कारण के दोनों में भेद हो, लेकिन सत्ता का भेद नहीं रहता। इससे ये निर्णय सिद्ध हो जाता है कि हम सबकी जिससे उत्पत्ति हुई है वो हमारे साथ है और सर्वदा साथ है। वो ऐसा कोई क्षण नहीं है कि जब वो हमारे साथ न हो, परंतु हम इस बात को इतने भूल गए हैं कि अपने को अनाथ अनुभव करने लगे हैं, वास्तव में अनाथ है नहीं। इसीलिए उपरोक्त प्रार्थना में सबसे पहला वाक्य है मेरे नाथ कहते ही एक आत्मीयता और नित्य संबंध की स्थिति हो जाती है। आप विचार करें कि आत्मीयता में प्रियता स्वाभाविक है, और जब हम ये जानते हैं कि हमारा नाथ समर्थ है और रक्षक है, तो फिर चिंता तथा भय के लिए कोई स्थान नहीं आता और न किसी प्रकार का संकोच रह जाता है। अब ये भी विचार करना है कि भाई जिससे हमको मांगना है उसकी महिमा क्या है, उसमें हमारी सिद्धा है या नहीं, हम उस पर विश्वास करते हैं या नहीं। तो भाई प्रार्थी तो कोई ऐसा नहीं होता जो उस पर विश्वास न करे कि जिसके सामने प्रार्थना कर रहा है उसकी महिमा न माने कि जिसे प्रार्थना कर रहा है, चाहे वो अपनी वाणी के द्वारा उसकी महिमा को प्रकट न करे, चाहे वो वाणी के द्वारा न कहे कि आप ऐसे हैं, परंतु उसके जीवन में यह बात स्वभाव से होती है कि जब हम कुछ मानते हैं तो किसी से मानते हैं, और जिससे मानते हैं उसको असमर्थ नहीं कह सकते, उसको अनादर नहीं कह सकते, उसको ये नहीं कह सकते कि वो हमारा अपना नहीं है। अतः प्रार्थना का उदय होना ही इस बात को सिद्ध करता है कि जिससे हम प्रार्थना कर रहे हैं वो हमारा अपना ही है और समर्थ है। अब विचार ये करना है कि भाई उस समर्थ से उस अपने से हम क्या माने, तो उस प्रार्थना में उसकी महिमा के संबंध में चार विशेषण है। उसने बताया है कि मेरे नाथ जो है, जो समर्थ है, जो रक्षक है, जो हमारे अपने ही है, उनकी कृपा में चार बातें बताई, अहेतु की, सुधावनी, सर्वसमर्थ और प्रतिपावनी। अब आप बताते हैं हमारी आपकी निर्भरता है कि तीन, जीवन की मांग, सामर्थ्य की मांग, पवित्र होने की मांग, और जो हमारे अपने हैं उनकी कृपा की महिमा में चार विशेषण है। पहला विशेषण है सुधामयी अर्थात जीवन देने वाली, दूसरा विशेषण है सर्वसमर्थ अर्थात सामर्थ्य देने वाली, और
तीसरा विशेषण है प्रतिस्पर्धनी अपने आप प्रवृत्त करने वाली, और चौथा विशेषण है अहेतुकी। अहेतुकी होने से हम सब प्रार्थना के अधिकारी हो जाते हैं। इस प्रार्थना में ये नहीं बताया गया कि उनकी कृपा उन्हीं पर होगी जो उनको मानते हैं अथवा जो उनको जानते हैं, ऐसा नहीं बताया। अब तो ये बताया कि उनकी कृपा जो है अहेतुकी है, अर्थात अहेतुकी होने से हम सब उस कृपा के अधिकारी हो जाते हैं। अब प्रश्न उत्पन्न होता है कि हम क्या मांगे और किसलिए किसके लिए मांगे। अगर हम ये सोचते हैं कि हम व्यक्तिगत अपने लिए मांगते हैं तो व्यक्तिगत अपना कोई अस्तित्व नहीं है, क्यों? क्योंकि शरीर हम है नहीं। और अगर आप कहें कि मैं शरीर के लिए मांगते हैं तो शरीर और विश्व का विभाजन हो सकता नहीं। इसलिए उस प्रार्थना में इस बात का भी ध्यान रखा गया है कि हम जो कुछ मांगेंगे वो सभी के लिए मांगेंगे, अर्थात सारे विश्व के साथ एकता स्वीकार कर ली गई तो मांगा गया। ये नहीं मांगा कि हमारे कर्म के अनुसार हमारा हमारे जीवन में जो सुख है वो न रहे अथवा जो दुख है वो चला जाए, ये नहीं मांगा। मांगा क्या कि दुखी प्राणियों के हृदय में प्यार का बल और सुखी प्राणियों के हृदय में सेवा का बल। अब आप विचार करें कि दुखी प्राणियों के हृदय में त्याग के बल की मांग क्यों की गई, और सोचिए और गंभीरता से सोचिए कि भाई दुख है क्या, दुख क्या है, इस पर जब आप विचार करेंगे तो आपको ये मानना पड़ेगा कि आप जब कुछ चाहते हैं और वो चाह जब पूरी नहीं होती तभी आप दुख का अनुभव करते हैं। अर्थात हम जो चाहते हैं वो होता नहीं, और जो होता है वो भाता नहीं, और जो भाता है वो रहता नहीं। ये बात जब हमारे और आपके सामने आती है तब हम और आप कहते हैं वह हम तो बड़े दुखी है, क्यों? क्योंकि हम जो बात चाहते थे वो हुई नहीं। अब आप सोचिए और गंभीरता सोचिए, क्या संसार में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके संबंध में आप ये कह सके कि उसकी सभी कामनाएं पूरी हो गई? क्या कोई ऐसा व्यक्ति है कि जिसके संबंध में आप ये कह सके कि उसकी कोई कामना पूरी नहीं हुई? मेरा यहाँ तक विश्वास है, मैंने यहाँ तक सुना है, समझा है, सोचा है, वहां तक तो मुझे ऐसा मालूम होता है कि ऐसा व्यक्ति तो मिल सकता है कि जिसकी सभी कामनाएं नष्ट हो गई, जिसकी जिज्ञासा पूरी हो गई हो, जिसको प्रेम की प्राप्ति हो गई हो, परंतु ऐसा व्यक्ति नहीं मिल सकता कि जिसके लिए आप ये कहें कि उसकी सभी कामनाएं पूरी हो गई। अब आप सोचिए और गंभीरता सोचिए कि जब सभी कामनाएं पूरी नहीं हो सकती तो इससे ये निर्वाह सिद्ध हो जाता है कि कामना पूर्ति मात्र हमारे आपके जीवन का लक्ष्य नहीं है, अर्थात वो हमारी आपकी वास्तविक आवश्यकता नहीं है। लेकिन हाँ, ये अवश्य कह सकते हैं कि कामना पूर्ति का भी जीवन में स्थान है और कामना आपूर्ति का भी जीवन में स्थान है। कामना पूर्ति किसलिए है? कामना निवृत्ति के लिए। और कामना आपूर्ति किसलिए है? कि कामना निवृत्ति के लिए। जब हम अगर इस बात को भलीभांति जान लेते हैं कि कामना पूर्ति भी कामना निवृत्ति के लिए है और कामना आपूर्ति भी कामना निवृत्ति के लिए है, तब हमको आपको ये मानना ही पड़ेगा कि आज जिस कामना की आपूर्ति से हम दुखी हैं, ये जो कामना के त्याग का अगर हमारे और आपके जीवन में आ जाए तो भाई दुख जैसी कोई वस्तु रह नहीं जाती। जैसे कल्पना करो कि एक अंधा आदमी आपका रूप देखना चाहता है, अब सारा संसार मिलकर उसकी सहायता करे कि भाई जब तक देखने की शक्ति उसे मिले तब तक किसी और की सहायता से वो अपनी इस कामना को पूरा नहीं कर सकता। लेकिन यदि वो विचार करे और ये सोचे कि भाई गहरी नींद में तो सभी अंग होते हैं, जब चेहरे पे हम बिना देखे रह सकते हैं तो आगे तक भी बिना देखे रह सकते हैं, अथवा देखते देखते ही आखिर न देखना ही होता है, ऐसी कोई कामना है नहीं कि जिसकी प्रवृत्ति अखंड हो, जो सदैव पूरी हो सके, ये बात हम सबको माननी पड़ती है। तो फिर भाई अंदर हो जाने पर देखने की वासना का त्याग करना कोई कठिन बात नहीं है। इससे ये सिद्ध हो जाता है कि भाई दुखी का दुख तभी मिल सकता है जब उसमें त्याग का बल आ जाए। अगर दुखी में त्याग का बल नहीं है तो सारा संसार मिलकर एक व्यक्ति के दुख का भी नाश नहीं कर सकता। आप अपना सुख बांट सकते हैं परंतु किसी का दुख मिटा सकते हैं, ये किसी के बस की बात नहीं है। आप कहेंगे कि व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन जो व्यक्ति नहीं है, जो सब प्रकार से समर्थ है, वो तो ऐसा कर सकता है। तो भाई मेरे उसी का तो विधान है कि दुख में त्याग का बल हो, ये व्यक्ति का विधान नहीं है कि दुख में त्याग का बल हो। क्यों? त्याग के बल से ही दुख का सदुपयोग हो सकता है, एक बात। दूसरी बात आप सोचिए कि आप लोग जो ये सोचते हैं
कि दुख जीवन का आवश्यक अंग नहीं है, ये बड़े ही प्रमाद की बात है। भाई मेरे, सुख की अपेक्षा दुख कहीं जीवन का आवश्यक अंग है। अगर आप गंभीरता से देखेंगे तो जीवन का आरंभ दुख से है, सुख से नहीं। बालक जब उत्पन्न होता है तो रोता है, हंसता नहीं। हाँ, अगर कोई बालक इतिहास से ऐसा हो कि जो मर रहा हो, तो सोचना चाहिए उस बालक में किसी प्रकार की कमी है, किसी प्रकार की असौर्णता है, अनॉर्मल है। नॉर्मल बालक जो भी होगा वो पैदा होते हुए होगा। इससे क्या सिद्ध हुआ कि जब हम पैदा हुए तो रोते हुए पैदा हुए। इससे ये स्पष्ट सिद्ध हो जाता है कि जीवन का आरंभ दुख से हुआ है। तो भाई, जिस जीवन का आरंभ ही दुख से हुआ है, उस जीवन में किसी प्रकार का दुख न रहे, ये सोचना ही बेकार है। लेकिन एक बात सोचना है कि जिस परिवर्तनशील जीवन में हम दुख का अनुभव करते हैं, वो वास्तव में जीवन नहीं है। जीवन की तो मांग है, जीवन की तो आवश्यकता है। और वो जीवन की आवश्यकता कैसे पूरी होगी कि जब हम दुख में क्या करना चाहिए इस बात को मान लें, सुख में क्या करना चाहिए इस बात को मान लें। इसी मूल सत्य को सामने रखकर इस प्रार्थना में ये कहा गया है कि जो हमारे अपने हैं और जिनकी कृपा अहेतु की है, सर्वसमर्थ है, जीवन देने वाली है, पवित्र करने वाली है, उनसे हमने क्या प्रार्थना की कि हम सब एक हैं, अर्थात सारी सृष्टि एक है। सबके साथ एकता स्वीकार करके दुखी प्राणियों के हृदय में त्याग के बल की प्रार्थना की, अर्थात दुखियों में त्याग का बल आ जाए। इससे ये तो नहीं कह रहा कि आपके विधान के अनुसार जो हमारे जीवन में दुख है वो दुख चला जाए। अरे दुख भले ही बना रहे, लेकिन उसके साथ साथ त्याग का बल आ जाए। तो त्याग का बल आने से आया हुआ जो दुख है वो निर्जीव हो जाएगा। अथवा यह कहो कि दुख जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए आया है वो उद्देश्य पूरा हो जाएगा। तो दुख जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए आया है, सुख की दासता से मुक्त करने के लिए आया है, अथवा सुख लालसा से का नाश करने के, सुख लालसा का नाश करने के लिए आया है। तो मेरे कहने का तात्पर्य था कि दुख में त्याग के बल की आवश्यकता है। इस दृष्टि से हम सबको दुख में त्याग के बल की प्रार्थना करनी चाहिए। दुख काल में त्याग ही हमारा वास्तविक साधन है। त्याग के बिना दुख का सदुपयोग हो ही नहीं सकता। ये नियम है कि जिसका सदुपयोग हो जाता है वो वस्तु अपने आप नाश हो जाती है। दुख का सदुपयोग करने पर दुख अपने आप नाश हो जाएगा। कल्पना करो, आपको भूख लगी है, लेकिन आप में भोजन की कामना के त्याग का बल है, तो वो आपकी भूख आपको क्षोभित नहीं कर सकती। और जब आप क्षोभित नहीं होते तब क्रोध नहीं आता। अगर क्रोध नहीं आता तब विस्मृति नहीं होती। किसकी विस्मृति? कर्तव्य की विस्मृति, अपने स्वरूप की विस्मृति, अपने प्रेमास्पद की विस्मृति नहीं होती। इस दृष्टि से हुआ कि हम सबको क्रोध रहित होना है, और क्रोध रहित होने के लिए क्षोभ रहित होना है, और क्षोभ रहित होने के लिए दुख के भय से मुक्त होना है, और दुख के भय से मुक्त होने के लिए दुख में त्याग बल की आवश्यकता होती है। इस दृष्टि से ये मानना ही पड़ेगा कि दुखी का साधन त्याग है, दुखी का कर्तव्य त्याग है, दुखी को त्याग को अपनाना ही है। इस दृष्टि से जब हम सब दुख में त्याग को अपना लेंगे, त्याग के अपनाते ही दुख का भय सदा के लिए चला जाएगा। अब रही सुख की दाता की बात। सुख का त्याग नहीं हो सकता। सुख ऐसी प्रिय वस्तु है, ऐसी मधुर वस्तु है कि उसका त्याग की बात कहना एक अपने आप को धोखा देना है। परंतु भाई, अगर सुख काल में सेवा का बल आ जाए, सेवा का बल आ जाए, तब बोले सेवा सेवक के लिए सुख का त्याग करना बहुत ही स्वाभाविक हो जाता है। क्यों? सेवक का हृदय पराए दुख से भर जाता है, तो पराए दुख से भरते ही वो अपना प्राप्त सुख बांटने के लिए तत्पर हो जाता है। इससे ये भी सिद्ध होता है कि भाई सुख काल में सेवा के बल की आवश्यकता है। सेवा का अर्थ ये नहीं है कि आप किसी का दुख मिटा सकते हैं। सेवा का अर्थ है कि आप अपना सुख बांट सकते हैं, दुख नहीं मिटा सकते। सुख बांटने का अर्थ क्या है कि भाई सेवक का हृदय में उदारता करना निवास करने लगती है। जैसे पराए दुख से जब हम दुखी होते हैं तब हमारा हृदय कर्मठ हो जाता है, और कर्मठ होने के बाद जो सुख हम भोगते थे, तो इस सुख भोग की जो रुचि है वो नष्ट हो जाती है।